नमस्कार भक्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जो भगवान गणेश जी की महिमा को दर्शाती है। एक ऐसे दिव्य सफर पर ले चलेंगे जिसमें हम गणेश चतुर्थी की चार पौराणिक और प्रचलित कथाओं का वर्णन करेंगे। यह माना जाता है कि इन कथाओं को व्रत के दौरान सुनने से सभी संकट दूर होते हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। प्रथम कथा, देवताओं की विपदा और गणेश जी की परिक्रमा। एक समय की बात है जब देवता अनेक विपदाओं में घिरे हुए थे। सहायता के लिए वे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी वहां विराजमान थे। देवताओं की स्थिति सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा, तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए योग्य बताया। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वहीं गणेश जी चिंतन में पड़ गए। उन्हें समझ आया कि चूहे के ऊपर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना समय साध्य होगा। तभी उनके मन में एक अद्भुत विचार आया। गणेश जी ने उठकर अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। कार्तिकेय जब परिक्रमा करके लौटे तो स्वयं को विजेता घोषित करने लगे। तब भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक स्थित हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। व्रत करने वाले के सभी दुख दूर होंगे और उसे जीवन के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। उसकी सुख समृद्धि चारों तरफ से बढ़ेगी और उसे पुत्र, पौत्रादि, धन एवं ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। तो बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरी कथा, कुम्हार बालक और संकष्टी चतुर्थी का चमत्कार। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह अपनी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन उनमें से कोई भी ठीक से पक नहीं पाता था। निराश और हताश कुम्हार ने एक पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने उसे बताया कि यदि वह अपने बर्तनों के साथ एक छोटे बालक को आंवा में डाल देगा तो बर्तन अच्छे से पक जाएंगे। संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन था और उस कुम्हार ने पुजारी की सलाह मानकर एक छोटे बालक को बर्तनों के साथ आंवा में डाल दिया। उस बालक की मां अपने बेटे की चिंता में व्याकुल थी। उसने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। उसने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हुए भगवान गणेश से विनती की कि उनके पुत्र की रक्षा करें। अगले दिन जब कुम्हार ने सुबह आंवा खोला तो उसने देखा कि बर्तन अच्छे से पक गए थे, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि बालक का एक भी बाल बांका नहीं हुआ था। कुम्हार यह देखकर डर गया और तुरंत राजा हरिश्चंद्र के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। राजा ने बालक और उसकी मां को दरबार में बुलवाया। मां ने दरबार में उपस्थित सभी को संकष्टी चतुर्थी का महत्व बताया और कैसे इस व्रत के पालन से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। भगवान गणेश की कृपा से ही उसका बेटा सकुशल बच गया था। इस घटना के बाद से ही महिलाएं संतान और परिवार की सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने लगीं। ये व्रत भगवान गणेश की अपार कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावी माध्यम बन गया। तो बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरी कथा, विष्णु भगवान का विवाह। एक समय की बात है जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, यह एक बड़ी भूल सिद्ध होने वाली थी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ गया और बारात चल पड़ी। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए लेकिन गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। देवताओं के बीच इस विषय पर चर्चा होने लगी। सभी को आश्चर्य था कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला या वे स्वयं ही नहीं आए। आखिरकार उन्होंने विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। इसके अलावा उन्हें सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि वे नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, इतने बड़े भोज का इंतजाम करना मुश्किल होता है। इतनी बातचीत चल ही रही थी कि किसी ने सुझाव दिया, अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे ताकि वे बारात की सुरक्षा कर सकें। उनका वाहन चूहा है जिससे वे बारात से पीछे रह जाएंगे। सभी ने इस सुझाव को पसंद किया और विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी। गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात आगे बढ़ी लेकिन नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे हैं। नारद जी ने उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा, विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि वे अपनी मूषक सेना को आगे भेजें जो रास्ता खोद देगी और बारात के रथ धरती में धंस जाएंगे। गणेश जी ने तुरंत अपनी मूषक सेना को भेज दिया। सेना ने जमीन को पोला कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशों के बाद भी पहिए नहीं निकल सके। सभी देवता चिंतित हो गए। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती ने आते ही श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना की और देखते ही देखते सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा नहीं की, इसीलिए यह संकट आया है। हम जैसे अज्ञानी भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, आप लोग देवता होकर भी गणेश जी को कैसे भूल गए? अब गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़ें तो सब कार्य सफल होंगे। सभी देवताओं ने गणेश जी की जयकार की और बारात ने पुनः यात्रा शुरू की। अंततः विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और सभी देवता सकुशल अपने अपने स्थान पर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सिद्ध करें। बोलो, गजानन भगवान की जय। तो बोलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। चौथी कथा, नर्मदा किनारे की लीला और गणेश व्रत का चमत्कार। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने का आग्रह किया। भगवान शिव ने सहमति दे दी, लेकिन समस्या यह थी कि हार जीत का निर्णय कौन करेगा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनकों से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर उसे जीवित कर दिया। पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला तुम करोगे। चौपड़ का खेल आरंभ हुआ और तीन बार खेला गया। संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही विजयी रहीं। खेल समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया। बालक ने महादेव को विजयी घोषित किया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, माता, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। बालक की विनती सुनकर माता पार्वती ने कहा, यहां गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर लौट गईं। एक वर्ष बीतने पर नाग कन्याएं उस स्थान पर आईं। बालक ने उनसे गणेश व्रत की विधि जानी और 21 दिन तक निरंतर गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बालक को मनोवांछित वर मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। गणेश जी ने बालक को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ के दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं, अतः भगवान शिव ने भी बालक के कहने पर 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह पुनः भगवान शिव के साथ प्रसन्नता से रहने लगीं। भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि बताई। माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। तब से गणेश चतुर्थी का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाने लगा। तो भक्तों बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री गणेश जी की अटूट कृपा बनी रहे। इस दिव्य कथा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है कि आप सबने इस कथा का आनंद लिया होगा। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए TPZ भक्ति चैनल को सुनते रहें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।